हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद शिवांशा को उसकी कल रात की गलती की सजा देने के लिए घर पर रुका था। हालांकि उसका इरादा बाकी लोगों की तरह शिवांशा के भी फ्यूचर का सोचकर उसे सजा देने का था, लेकिन उसका मासूम चेहरा और बातें सुनने के बाद वो उसके साथ रूड और सख्त बर्ताव नहीं कर पाया। पहले वेद ने शिवांशा को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने के लिए काफी सारी शॉर्ट और मॉडर्न ड्रेसेस मंगवा कर दीं, लेकिन शिवांशा ने उनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं की। उसके हिसाब से वो ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहती थी जिसके बाद वेद उसे नजर उठाकर भी ना देख सके। बातों ही बातों में जब वेद ने शिवांशा की इच्छा पूछी तो उसके मुंह से निकल गया था कि वो हमेशा वेद की पत्नी बनकर रहना चाहती है। जैसे ही शिवांशा ने ये कहा, एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। शिवांशा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने अनजाने में अपने दिल की बात कह दी है। वो जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में चली गई तो वहीं वेद अभी भी लिविंग एरिया में खड़ा हुआ था। वेद के लिए मानो एक पल के लिए वो समय वहीं पर थमसा गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो बेहद तेजी से धड़क रहा था। ये सब कुछ लम्हों के लिए ही था। ना तो वेद की उम्र इतनी कम थी कि वो ऐसी बातें सुनकर प्यार मोहब्बत में खो जाए, और ना ही वो एक इमोशनल इंसान था। वेद ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे जिसका डर था वही हो रहा है। मेरे साथ रहते हुए शिवांशा शायद मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसकी बातें और हरकतें ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगने लगी हैं। हमारा कोई मैच नहीं है। शिवांशा के सामने उसका पूरा लाइफ और करियर पड़ा है। मुझे उसे समझाना होगा। इस रिश्ते में उसे कभी खुशी नहीं मिल सकती। वेद ने शिवांशा को समझाने का फैसला किया और वो जल्दी से अंदर उसके पीछे गया। शिवांशा बेड पर बैठी हुई थी और शर्म के मारे उसके कान लाल हो गए थे। वेद को अपने सामने देखकर शिवांशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। हमें बात करनी चाहिए, वेद ने गंभीर आवाज में कहा और फिर शिवांशा के पास जाकर बैठ गया। कुछ पल रुकने के बाद वेद बोला, तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा, क्या सच में तुम वो चाहती हो? देखो, बिना डरे ईमानदारी से सच बोलना। मैंने फील किया है कि अब तुम मेरे सामने कंफर्टेबल हो गई हो और पहले की तरह डरते हुए या अटक कर बात नहीं करती। शिवांशा बिल्कुल चुप थी। उसे भी एहसास नहीं हुआ कि कब वो वेद के साथ इतना खुलकर बिना डरे अपने दिल की बात रखने लगी थी, जबकि वेद के अलावा अरमान से भी वो इतना खुलकर बात नहीं कर पाती थी। शिवांशा के कोई जवाब नहीं देने पर वेद बोला, जब तक तुम मुझे पूरी बात बताओगी नहीं तब तक मैं कोई डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछा था और तुमने बहुत अजीब सा जवाब दिया। उसमें अजीब कुछ नहीं था। आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने बस वही बताया जो मैं अपने फ्यूचर को लेकर सोचती हूँ, भले ही वो 3 महीने का हो या 3 साल का हो, शिवांशा ने जल्दी से जवाब दिया। ये नहीं हो सकता, वेद बोला। क्यों नहीं हो सकता? हम अभी भी तो सबके सामने हस्बैंड वाइफ बनकर रहते हैं। क्या हो जाएगा जो हमेशा के लिए हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे? वैसे भी इस रिश्ते से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, शिवांशा ने जवाब दिया। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी तुम बच्ची हो और नादान भी, इन सब चीज़ों को नहीं समझ रही हो, वेद ने धीमी आवाज में कहा। शिवांशा जल्दी से उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने वेद की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, देखिए, आपने मुझे मारने का डिसाइड किया था, फिर अचानक से आकर मेरे फ्यूचर के बारे में पूछने लगे। मैं तो वही बताऊंगी ना जो मेरे दिल में होगा। वेद ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। अब तक शिवांशा ये नहीं जानती थी कि उसने उसे मारने का इरादा बदल दिया है। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, बार बार मेरे सामने ये मत बोलो। ठीक है, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इन सब की वजह से सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, तुमने और तुम्हारी भाई ने भी काफी कुछ टॉलरेट किया है। सीरियस होकर बताओ, अपने फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? कुछ तो सपने रहे होंगे तुम्हारे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या जो भी तुम बनना चाहो, वेद ने हल्का झुंझलाकर कहा। जैसे ही वेद ने ये बताया कि अब वो शिवांशा को नहीं मारने वाला है, शिवांशा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई। वो खुश थी कि देर से ही सही, लेकिन वेद को उसकी सच्चाई नजर तो आई। मैंने बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए। जब आप मुझे इनोसेंट समझते हैं तो ये भूलने में क्या दिक्कत है कि मैं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ। प्लीज मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने दीजिए। मैं कभी किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। आप जो बोलोगे वो करूंगी, शिवांशा ने बच्चों की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। जिद नहीं करोगी? अब क्या कर रही हो, ये जिद ही तो है। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम मुझसे बहुत छोटी हो और ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चलते हैं, वेद ने उसे समझाया। गुस्सा करने के बजाय वो उसे प्यार से बात कर रहा था। ये क्या बात हुई कि मैं आपसे ज्यादा छोटी हूँ? अब इसमें मेरी गलती है क्या कि मैं इस दुनिया में लेट आई? और वैसे भी प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, शिवांशा ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा। हालांकि हर बार की तरह बोलने के बाद उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जल्दबाजी में क्या कह दिया। वेद उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गई हो तुम? प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, वेद ने सख्त आवाज में कहा। आप नहीं करते लेकिन मैं तो करती हूँ ना, शिवांशा ने बिल्कुल धीमी आवाज में बड़बड़ाकर कहा, लेकिन फिर भी वेद को उसकी बातें सुनाई दे गई थी। तुम्हें समझाना बेकार है, पहले ही ठीक थी जब ठीक से तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी। अरमान से बात करके तुम्हारे पुराने अकेडमिक सर्टिफिकेट्स मंगवा लूंगा। सोच लेना आगे कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है, वेद ने बात को टालते हुए कहा। तो क्या आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे, शिवांशा ने आंखें बड़ी करके पूछा।
वेद के बात को टालने के बावजूद शिवांशा की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। वेद ने सिर हिलाया और कहा, बेशक फिलहाल नहीं निकाल सकता, क्योंकि राजावत फैमिली इस वक्त चोट खाई हुई है और कहते हैं कि घायल शेर के आगे जाना बेवकूफी होती है। पहले पूरा मामला निपट जाने दो, तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। और हाँ, अपनी आदतें सुधारो, अगर यहाँ रहना है तो टाइम से उठो और बाकी लोगों की तरह कुछ काम करो। एक वक्त ऐसा था जब शिवांशा वहां आई थी तब वेद ने उसे उस फ्लोर से बाहर तक निकलने के लिए मना किया था। यहां तक कि उसने साफ कहा था कि वो उसके किसी भी परिवार वाले से बात भी ना करे। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। वेद ने शिवांशा को वहीं छोड़ा और बाहर जाने लगा। बाहर जाते हुए वो धीरे से खुद में बड़बड़ा कर बोला, मैडम को मेरी वाइफ बनकर रहना है। पता नहीं इसके दिमाग में न जाने कैसे उल्टे सीधे ख्याल चलते होंगे। वेद बाहर जा रहा था तभी शिवांशा ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, सुनिए। वेद रुककर तुरंत उसकी तरफ पलट गया। उसने भौंय उठाकर सवालिया नजर से शिवांशा की तरफ देखा। कुछ नहीं, शिवांशा ने आगे कुछ नहीं कहा। आगे से किसी चीज से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। चाहता हूं कि जिस तरह तुम खुलकर मेरे सामने अपनी बात रख पाती हो वैसे दूसरों के सामने भी रखो और थोड़ा ब्रेव बनो। हमेशा अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करके बिताई है। हालांकि तुम्हारी जिद और फ्यूचर प्लान्स बहुत बेकार थे, लेकिन अच्छा लगा कि तुमने कभी किसी चीज के लिए जिद तो की। सोच लेना आगे क्या करना है और कुछ अच्छा सेलेक्ट करना, नहीं समझ आए तो मैं हेल्प कर दूंगा। वेद ने एक बार फिर शिवांशा पर वही बातें समझाई और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिवांशा जल्दी से बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और साथ ही दिल में एक नई उम्मीद।
चलो अच्छा है, ये मेरी जान नहीं लेने वाले हैं। अब इतनी केयर करेंगे और प्यार से रखेंगे तो प्यार तो किसी को भी हो जाएगा ना। फिर कहते हैं कि मुझसे दूर रहो, हमारा कोई मैच नहीं है, जबकि मुझे ये लगता है कि हमसे बेस्ट मैच हो ही नहीं सकता। मैं आपको मना ही लूंगी वेद, शिवांशा ने एक्साइटिंग वॉइस में कहा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लीला अपने कमरे में बैठी थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। उसके सामने तेजेंद्र राजावत बैठा हुआ था। जब से अंकुश का पैर टूटा था उसके बाद से ही लीला मौका देख रही थी कि कैसे वो शिवांशा और वेद को चोट पहुंचाए। मुझे समझ नहीं आता आखिर आप हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे हैं। वो जो जेल में पिछले 2.5 महीने से सड़ रहा है वो कोई और नहीं आपका ही बेटा है, वो भी इकलौता बेटा। उस वेद सिंह चौहान ने उसका पैर तोड़वा दिया और अब उसकी जान लेने पर उतारू है कि आप यूं ही बैठे बैठे ये सब देखते रहेंगे। लीला अपना गुस्सा तेजेंद्र पर उतार रही थी। सिर्फ तुम्हें ही गुस्सा नहीं आता, जो भी हो रहा है उससे मेरा भी खून खौल रहा है। पर तुम अच्छे से जानती हो कि वेद सिंह चौहान की क्या हैसियत है। उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी है जिसे कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। और वो लड़की शिवांशा, न जाने क्यों वो खुद उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जब तक वो वेद के साथ है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तेजेंद्र ने जवाब दिया। एक तो पता नहीं उसके भाई बहन किस मिट्टी के बने हुए हैं जो उस वेद पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैंने इतनी कोशिश की कि मैं शिवांशा का सच उनके सामने रख सकूं, लेकिन वे मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। एक बार वो लड़की उस घर से बाहर निकल जाए उसके बाद उसे कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानती हूं। लीला दांत पीसते हुए बोली। वेद से ज्यादा गुस्सा उसे शिवांशा पर था। फिलहाल मैं तो यही सलाह दूंगा कि कुछ मत करो, उस लड़की को चौहान फैमिली में रहने दो। वो जितना ज्यादा उनके बीच रहेगी उनका भरोसा और प्यार उतना ही गहरा होता जाएगा, और कहते हैं कि गहरे प्यार और भरोसे को चोट भी बड़ी लगती है। जिस दिन उस लड़की का सच सामने आएगा उस दिन न सिर्फ शिवांशा से वे नफरत करेंगे बल्कि वेद पर भी उनका भरोसा टूट जाएगा। उस दिन वेद सिंह चौहान अकेला होगा और हम उस पर वार कर पाएंगे, तेजेंद्र ने लीला को समझाया। लीला गौर से उसकी बातें सुन रही थी और उसे तेजेंद्र की ये एडवाइस सही लगी। उसने तेजेंद्र की बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिलहाल के लिए मैं शिवांशा को जाने देती हूँ, लेकिन आपको अंकुश के मामले में भी तो कुछ करना होगा ना। उसका तरीका भी निकाल लिया है, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल मैंने इतना ही इंतजाम किया है कि अंकुश जेल में आराम से रह सके, तब तक उसकी बेल का इंतजाम भी हो जाएगा। एक बार अंकुश बाहर आ गया तो मैं उसे कभी अंदर नहीं जाने दूंगा, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तेजेंद्र ने शांत लहजे में कहा। ऐसा नहीं था कि जो भी हो रहा था उससे उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, पर वे शांत थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने इकलौते बेटे अंकुश के लिए। तेजेंद्र के समझाने पर लीला ने धैर्य से काम लेने का सोचा। दूसरी तरफ शाम के वक्त नव्यांशी वेद के कहे मुताबिक दिल्ली की फ्लाइट ले चुकी थी, तो वहीं वेद को इस बात का इंतजार था कि शिवांशा अपने लिए क्या फैसला लेती है। शिवांशा ने अपने लिए डिसीजन ले लिया था और वो वेद के घर आने का इंतजार कर रही थी। ओके फिलहाल के लिए इतना ही, क्या लगता है शिवांशा ने अपने लिए क्या डिसीजन लिया होगा। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।